राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा नील माधव राधा नील माधव राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा नील माधव की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की जय श्री श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय।
हरे कृष्ण सबको हम विनती करते हैं सब अपना अपना मोबाइल बाहर निकालें और एक तो उसको स्विच ऑफ करें या साइलेंट मोड पे रखें और बीच में मोबाइल कॉल या व्हाट्सएप मैसेज को अटेंड ना करें। हरे कृष्ण और बीच में लेक्चर में भी और कोई ना उठे ताकि सब भक्तों को डिस्टर्ब ना मिलते। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुक्ल द्वितीय आषाढ़ में होती है, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे तिथि पर, दूसरे दिवस पर। वैसे तो जगन्नाथपुरी में इसी तिथि पर मनाया जाता है, परंतु हमारे संस्था में अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ में जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव अलग अलग दिनों पर मनाया जाता है, क्योंकि ये उत्सव अभी केवल जगन्नाथपुरी में नहीं बल्कि सारे विश्व भर में मनाया जा रहा है और अलग अलग स्थानों में परिस्थितियां अलग अलग हैं, प्रचार की आवश्यकताएं भी अलग अलग हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने विदेशों में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन अलग अलग समय पर करवाया था, जब वहां उस जगह के लिए अनुकूल समय था। कभी कभी सरकार या अधिकारियों के द्वारा अनुमति नहीं मिलती है रथ यात्रा के लिए, जिस दिन पर वो कहते हैं उसी दिन पर करना पड़ता है। भारत में भी अन्य स्थानों में मौसम के आधार पर भी, ऋतु के आधार पर भी कभी कभी तय किया जाता है कि प्रचार की दृष्टि से अच्छा क्या है। जगन्नाथ मंदिर के जो पन्ना है उन्हें, उनको ये अच्छा नहीं लगता है, वो बहुत विरोध करते हैं कि आप लोग जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव अलग अलग दिनों पर क्यों मनाते हैं, केवल उसी तिथि पर मनाना चाहिए। तो ऐसे उनका कथन है और वो जो कह रहे हैं वो तो सही बात है, क्योंकि जिस तिथि पर उत्सव मनाया जाना चाहिए उसी तिथि पर मनाना चाहिए। फिर भी श्रील प्रभुपाद जी ने प्रचार के दृष्टि को ध्यान में रखा, क्योंकि प्रचार के लिए जो अनुकूल है, जो उचित है, उस दृष्टि से ये एक उत्सव यदि मनाया जाए, अधिक संख्या में लोग आ सकें, तो फिर बहुत अच्छी तरह से प्रचार हो सकता है। तो कभी कभी ऐसे नियमों का परिवर्तन कुछ थोड़ा बहुत किया जाता है जब प्रचार को ध्यान में रखा जाता है। तो खैर, शुक्ल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन पर ये जगन्नाथ रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में मनाया जा रहा है। प्राचीन काल से हजारों हजारों वर्ष बीत चुके हैं। राजा इंद्रदुम्न के द्वारा ये जगन्नाथ मंदिर की स्थापना हुई थी। आप में से अनेक भक्तों ने जगन्नाथ की कथा सुनी होगी कि भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह इस प्रकार से कैसे बने, इसके पीछे इतिहास क्या था, मंदिर का निर्माण कार्य कैसे हुआ इत्यादि। संक्षेप में ही इतना बताना उचित रहेगा यहां पर कि यह उत्सव बहुत पुराना है और उस समय से चलते आ रहा है। जैसे कल संक्षेप में हम बता रहे थे, जगन्नाथ मंदिर ये नीलाचल है और गुंडीचा ये वृंदावन है। नीलाचल या जगन्नाथ मंदिर ये कुरुक्षेत्र या द्वारका के समान है। तो रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के मंदिर से निकलती है और गुंडीचा मंदिर तक पहुंचती है। इसका इतिहास ये है कि एक बार जब श्री कृष्ण द्वारका में रह रहे थे तो कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के उत्सव के सूर्य ग्रहण के समय एक बहुत बड़ा अनुष्ठान मनाया जा रहा था। तो वहां भारतवर्ष से अलग अलग प्रांतों से बहुत सारे लोग आए थे। तो द्वारका के निवासी यदुवंशी भी आए थे, उधर ब्रजवासी भी आए थे, नंद महाराज, यशोदा मैया, गोपिका सब। तो जब ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण को इतने वर्षों के बाद देखा तो उनको बहुत आनंद हुआ। फिर भी उस आनंद में एक संकोच का मिलावट भी था। क्या मिलावट थी वो संकोच की? मिलावट ये थी कि जब वृंदावन में श्री कृष्ण रहते थे तो उस समय वो ग्वाल बाल के रूप में थे, वो बांसुरी बजाते थे, गायों को चराते थे, गोपियों के साथ में रासलीला रचाते थे, और वृंदावन का जो वातावरण है वो एक राजा या राजकुमार के रूप में वहां पर श्री कृष्ण नहीं थे। परंतु यहां जब वो द्वारका में आए तो यहां तो एक राजकुमार थे और राजकुमार का ठाट था, सोने का मुकुट और ये वो बहुत सी चीजें, बड़े हाथी, घोड़े, पालकी वगैरह वगैरह, नौकर चाकर, बड़ी सेना। तो यहां का भाव कुछ अलग था। तो ब्रजवासियों को ये अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा हम तो खुश हैं आपको देख के, फिर भी वो कृष्ण वो नहीं हैं आप जो पहले यहां वृंदावन में थे, बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण वो आप नहीं रहे, अभी आप राजकुमार रहे हैं, इसलिए हम आपको द्वारका जाने के लिए नहीं देंगे, हम आपको वृंदावन खींच के ले आएंगे। फिर उन्होंने जब श्री कृष्ण अपने रथ पे बैठे कुरुक्षेत्र से द्वारका जाने के लिए तो ब्रजवासी गण और विशेष करके जो गोपियां हैं वो सब वहां उठे और उन्होंने रथ खींचना शुरू कर दिया। वृंदावन की ओर। तो इस घटना के पीछे ये रथ यात्रा मनाई जाती है, ये भाव है। सारे भक्त लोग जगन्नाथ भगवान को जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर ले जाते हैं, जो कि वृंदावन के समान है। तो इसलिए उस समय सारे भक्त लोग ब्रजवासियों के भाव में होते हैं कि हम भगवान कृष्ण को द्वारका या कुरुक्षेत्र से वृंदावन वापस ले आ रहे हैं। तो ये है तात्पर्य, यह एक भाव इस जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव में। चैतन्य महाप्रभु जब वहां पर आए तो उन्होंने भी इस उत्सव में बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साह से, प्रेम से अपने भक्तों के साथ में भाग लिया। अब होता ये है कि रथ यात्रा के 15 दिन पहले एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है स्नान यात्रा। अब भगवान जगन्नाथ के विग्रह है किस चीज के बने हुए होते हैं? हाँ, दारु ब्रह्म अर्थात पेड़ के बने हुए होते हैं। अधिकतर जो बड़े बड़े मंदिरों में विग्रह होते हैं वो तो या तो पत्थर के बने हुए होते हैं या धातु के बने हुए होते हैं इत्यादि, परंतु भगवान जगन्नाथ को दारु ब्रह्म कहते हैं, पेड़ से बने हुए हैं वो, लकड़ी से। तो भगवान जगन्नाथ का अभिषेक होता है और जब अभिषेक होता है तो मंदिर के बाहर उनको ले आया जाता है। वहां एक मंच होता है जिसको स्नान वेदी कहते हैं, वहां पर भगवान जगन्नाथ को बिठाया जाता है, बलदेव सुभद्रा देवी को भी, और वहां पास में एक कुआं है जिसको सुना कुआं कहते हैं। तो वहां से जल लाया जाता है और उस जल से भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो वहां अभिषेक करते समय तो सारा जो रंग है भगवान के विग्रहों के ऊपर वो तो निकल जाता है, क्योंकि पुराने जमाने में रासायनिक पदार्थ तो नहीं थे, जड़ी बूटियों से, औषधियों से आदि वो रंग बनाते थे। लेकिन ये रंग पानी से के धोने पर धुल जाते हैं, टिकते नहीं हैं। तो स्नान करने के बाद भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दिव्य शरीर के ऊपर जो रंग है, जो आंख है, मुस्कान है, सब है, वो सब निकल जाता है वहां से। यू शुड सिट, वंस क्लास स्टार्ट्स शुड नॉट गो। तो रंग सब निकल जाता है, हरे कृष्णा। तो इसलिए दर्शन सबको लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि सबके मन में विचार आ सकता है, अरे भगवान कैसे दिख रहे हैं, हाँ सारा रंग निकला हुआ है। अभी ऐसे हम देखेंगे भगवान को तो मन में अलग अलग विचार आ सकते हैं कि ऐसे कैसे भगवान दिख रहे हैं। भगवान का सुंदर, अभी कोई तस्वीर है भगवान जगन्नाथ की है यहाँ पे? नहीं है ना, कोई तस्वीर है? है तस्वीर, ले आएंगे। तो भगवान जगन्नाथ के मंदिर में आज भी वो वनस्पतियों से, जड़ी बूटियों से, औषधियों से सब बनाते हैं रंग। रासायनिक केमिकल वो पेंट नहीं लगाते हैं, रंग नहीं लगाते हैं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के मंदिरों में जगन्नाथ मूर्ति पे केमिकल पेंट लगा देते हैं, क्योंकि ज्यादा समय तक टिकते हैं वो, एक साल भर टिकते हैं। फिर भी इनका अभिषेक कैसे होता है आपको पता है? जैसे ये छोटी मूर्तियां हैं धातु के बने हुए होते हैं, जब धातु की मूर्तियों की का अभिषेक होता है तो पंचामृत आदि से, जल दूध आदि से अभिषेक किया जाता है। परंतु क्योंकि ये दारु ब्रह्म है भगवान जगन्नाथ, और उनके ऊपर जो रंग है वो पानी डालने से निकल जाता है, इसलिए उनके ऊपर पानी नहीं डाला जाता। तो अभिषेक कैसे किया जाता है? अभिषेक आईने में किया जाता है। भगवान के सामने एक आईना या दर्पण रखा जाता है। हाँ, तो सभी लोग जो पुजारी होते हैं वो शीशे में, आईने में भगवान का सुंदर रूप देखते हैं और आईने के ऊपर वो जल, दूध आदि सब डालते हैं। इस तरह से अभिषेक भगवान के प्रतिबिंब का होता है, लेकिन भगवान के विग्रह का प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। तो क्या रहने दो प्रभु, कोई बात नहीं, डोंट वरी, इट्स ओके। टुडे एवरीवन, सब लोग दर्शन लेंगे ही भगवान जगन्नाथ का, बहुत बड़े रूप में लेंगे। तो इसलिए आईने में भगवान जगन्नाथ के प्रतिबिंब का अभिषेक किया जाता है। तो इस दिन पर, स्नान यात्रा के दिन पर ऐसे नहीं होता है। प्रत्यक्ष जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह के ऊपर जल आदि सब डाला जाता है, इसलिए वो रंग निकल जाता है। जब रंग निकल जाता है तो तुरंत हाथी वेश, गज वेश डालते हैं। एक कारण तो ये है कि चेहरा ढक जाए, फिर जो रंग इधर उधर ऐसे मुंह पे बिखरा हुआ है वो नहीं दिखे। जो श्रद्धालु भक्त हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं जो इतने श्रद्धालु नहीं होते हैं या जिनकी अल्प श्रद्धा होती है, वो आके देखेंगे, अरे भगवान का चेहरा ऐसे दिखता है, ये लाल काला सब मिला हुआ है सारे चेहरे पे, तो उनके मन में कोई गलत भावना भी उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए गजवेश डालते हैं और उसके बाद फिर भगवान जगन्नाथ को अंदर ले जाया जाता है। अभी उनको रंग, नया रंग देना पड़ता है, तो इसको अंग राग कहते हैं। तो नए रंग को देते हैं, लगाते हैं, और इसके लिए कोई कारण देना चाहिए ना कि 15 दिन भगवान क्यों नहीं दर्शन देंगे, क्योंकि 12-13 दिन तो लग ही जाते हैं रंग लगाने में, फिर रंग सूखने के लिए भी थोड़ा समय चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है कि इतना सारा पानी डाल के भगवान जगन्नाथ को सर्दी हो जाती है, हल्का सा बुखार भी हो जाता है, और जब बुखार हो जाता है तो फिर उनको अंदर ले जाया जाता है। और वहां पे जो विशेष उनके सेवक होते हैं जिनका नाम है दैत और दैतपति, ये उनकी सेवा करते हैं। भगवान को पत्थर में रखाया जाता है, साधारण भोजन नहीं दिया जाता। साधारण समय पर भगवान जगन्नाथ को 56 भोग रोज खिलाया जाता है। इतना भोजन ग्रहण करते हैं भगवान जगन्नाथ की इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। परंतु इन 14-15 दिनों में जब भगवान जगन्नाथ दर्शन नहीं देते हैं, तो उस समय भगवान जगन्नाथ को फल का रस मिलता है और थोड़ी जड़ी बूटियां, औषधियां, ये सब मिल जाता है, क्योंकि बीमार है ना, बुखार है। तो बुखार है तो साधारण भोजन तो नहीं दिया जा सकता है। तो इस समय को अनवसर कहते हैं, जब भगवान दर्शन नहीं देते हैं। तो इस समय ये दैत लोग उनकी सेवा करते हैं। ये दैत कौन होते हैं? आपको पता है कि पहले भगवान जगन्नाथ नील माधव के रूप में विराजमान रहते थे नीलाचल में, और फिर जगन्नाथ के रूप में वो अभी प्रकट हुए हैं। तो नील माधव की सेवा करने वाले जो लोग थे वो शबर वंश के थे, शबर जाति के थे। तो वो लोग जंगल में रहते थे, लेकिन नील माधव के बड़े शुद्ध भक्त थे, सेवक थे। तो भगवान जगन्नाथ ने उनके लिए व्यवस्था की कि उनके मंदिर में इस अनवसर के समय केवल ये दैत लोग ही उनकी सेवा करेंगे। तो ये सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ है। पहले से ही उनको वरदान मिला उस समय से। तो खैर ये लोग भगवान की सेवा करते हैं उनके बीमारी के समय में। फिर ऐसे स्नान यात्रा के बाद जब ये 14 दिन का अनवसर होता है ना, जब भगवान के भक्त उनका दर्शन नहीं करते हैं तो सारे भक्त बहुत बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। कितने दिन हो गए, एक दिन भी यदि भगवान का दर्शन नहीं करते तो इतना उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ये सच्चे भक्त होते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रथा है। देखिए पुरानी संस्कृति है हमारे देश में कि प्रतिदिन भगवान का दर्शन मंदिर में करना चाहिए। आज भी ऐसे कई शहर हैं जहां पर लोग मंदिर में पहले जाते हैं, फिर आगे चल के अपने व्यवसाय आदि में चले जाते हैं, उसके बिना अपना व्यवसाय शुरू नहीं करते हैं। वृंदावन वगैरह में तो है ही, ये तो धाम है, परंतु ऐसे अन्य स्थानों में भी जहां भगवान के मंदिर हैं वहां पर ऐसे श्रद्धालु भक्त हैं जो सुबह सुबह भगवान का दर्शन करने जाते हैं। यदि मंगल आरती में नहीं जा पाए तो कम से कम अपने दैनिक कार्य शुरू करने के पहले मंदिर में जाते हैं। और यदि भगवान का दर्शन नहीं होता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो यहां पर जगन्नाथपुरी में सारे भक्त आदि थे। 350 दिन लगभग दर्शन करके भगवान का, और अब जब 14 दिन दर्शन नहीं होता था भगवान का तो सारे भक्त बेचैन हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु के लिए असहनीय हो जाता था, इसलिए वो जगन्नाथपुरी को छोड़कर चले जाते थे। वो पास में एक स्थान है जिसको अलालनाथ कहते हैं, वो वहां पर चले जाते थे। वहां पर एक सुंदर मंदिर है अलवर नाथ का, तो वहां जाके वो दर्शन करते थे। इस स्थान का इतिहास भी है परंतु आज नहीं सुनाएंगे क्योंकि वो विषय थोड़ा लंबा है। खैर इतना कहना काफी है कि जब ये अनवसर का समय चलता था तो उस समय सारे भक्त बहुत अपना धीरज खो बैठते थे कि कब देंगे दर्शन भगवान, कब देंगे। और फिर गुंडीचा मार्जन का तो सब की कल चर्चा की। तो जब अनवसर का समय चलता था और रथ यात्रा के 2 दिन पहले गुंडीचा मार्जन का उत्सव मनाया जाता है, और उसके बाद वाले दिन अर्थात रथ यात्रा के पहले दिन अनवसर के बाद पहली बार भगवान जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा दर्शन देते हैं सबको। अभी उनको नया रंग लगाया हुआ होता है और बिल्कुल ताजे लग रहे होते हैं, उनका शरीर चमक रहा होता है, ऐसे लग रहा होता है कि फिर से युवक बन गए हैं। तो इसलिए इसे नव यौवन दर्शन भी कहते हैं और नेत्रोत्सव भी कहते हैं। नेत्र उत्सव इसलिए क्योंकि उनके आंख जो है वो पट्टी से बांधे जाते हैं, तो पहली बार उनके आंख खोले जाते हैं और फिर आंखों का दर्शन भी होता है, और साथ साथ हमारे आंखों के लिए ये एक उत्सव है। भगवान का सुंदर रूप का दर्शन करना ये हमारे आंखों के लिए एक उत्सव है। वृंदावन के निवासियों के लिए भी ऐसा ही हुआ करता था। नित्योत्सवम न त्रिपुर दृश्य पिबंत्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपी नार निमेश्च। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि वृंदावन के नर नारियों के लिए प्रतिदिन प्रति क्षण एक उत्सव था, क्योंकि वो अपने आंखों से श्री कृष्ण का सुंदर रूप का दर्शन करते थे। तो नेत्रों के लिए एक उत्सव। जब अनेक दिनों के बाद भगवान जगन्नाथ के सुंदर रूप का दर्शन सभी लोग करते तो बहुत ही आनंद के समुद्र में डूब जाते। तो ऐसे नेत्रोत्सव के लिए चैतन्य महाप्रभु उनके भक्तों को ले आए। उनके आगे आगे काशीश्वर पंडित चल रहे थे सारे भीड़ को दूर करने के लिए, और फिर उनके आगे थे परमानंद पुरी और ब्रह्मानंद भारती, और उनके बाएं दाएं पर खड़े थे अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर इत्यादि, और बाकी सारे भक्त पीछे थे। बड़े जल्दी से जा रहे थे मंदिर की ओर, क्योंकि वो इतने आतुर थे कि भगवान जगन्नाथ का दर्शन कब होगा। और जब वो मंदिर में आए और भगवान जगन्नाथ का दर्शन उन्होंने किया तो सबका हृदय संतुष्ट हो गया, और इसलिए भगवान का दर्शन करते रहे। केवल बीच बीच में दर्शन भंग उस समय हो जाता था जब भगवान को भोग चढ़ाया जाता था, और इस बार भोग ज्यादा चढ़ाया जा रहा था क्योंकि अगले दिन रथ यात्रा का महोत्सव था, तो और तरह तरह के व्यंजन आदि सब अर्पण किए जा रहे थे भगवान जगन्नाथ को। तो केवल जब भोग चढ़ाया जाता था उस समय पे वो दर्शन नहीं कर पाते थे, परंतु बाकी समय निरंतर प्रातः काल से दोपहर के समय तक चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ में वहां खड़े रहे, भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन करते रहे। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्री जगन्नाथ देव की जो आंखें हैं वो कमल के पत्र के समान खिले हुए थे, कमल नयन, और चैतन्य महाप्रभु एक भौरे के समान थे जो कि इस कमल रूपी आंखों के अमृत का पान कर रहे थे। आप तो जानते हैं कि जो भौरा होता है वो कमल पुष्प आदि के पास जाता है और वहां से अमृत निकालता है, हमेशा कमल के पास मंडराते रहते हैं भौरे, मधुमक्खी जो होते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान के भक्त भी होते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते रहते हैं और उनके सुंदर रूप के अमृत का पान करते रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त ये भौरों के समान थे जो बहुत आतुरता से दर्शन करते जा रहे थे। इतना आनंद का अनुभव उनको हो रहा था, उनकी आंखों की प्यास तृष्णा मिटा रहे थे भगवान का दर्शन करके। तो ऐसे कई महान वैष्णव कवि हैं, उन्होंने भी इसी एक बात के ऊपर कविता लिखी है कि आंखों की तृष्णा, आंखों की प्यास बुझाने के लिए भगवान का दर्शन चाहिए। जैसे गले की प्यास मिटाने के लिए पानी चाहिए, उसी तरह से भक्तों को आंखों की प्यास जो है मिटाने के लिए भगवान का सुंदर दर्शन चाहिए। तो ऐसे दर्शन करते रहे नेत्रोत्सव के समय। फिर 12 बजे का समय हुआ, चैतन्य महाप्रभु नहीं जाना चाहते थे वहां से, उनके शरीर में सारे अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे। परंतु जब मध्याह्न का समय हुआ तो सारे भक्तों ने महाप्रभु को प्रसाद के लिए ले जाना ठीक समझा, और फिर अगले दिन रथ यात्रा का समय था। तो फिर से प्रातः काल में चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को साथ में लिया और कहा कि चलो हम सब जगन्नाथ मंदिर जाते हैं, आज रथ यात्रा है। तो सारे भक्त लोग आए बड़े आनंद से, और वहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया। तो भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां जो हैं बहुत बड़े हैं और बहुत भारी हैं। आप में से कितने भक्त भगवान जगन्नाथ के मंदिर में अंदर गए हैं, बहुत सारे आप में से, तो आपने देखा होगा कि कितने बड़े और भारी हैं वो विग्रह है। तो उनको उठाना इतना आसान काम नहीं है। तो भगवान के विग्रह को उठाने के लिए खास ये लोग पहलवान लोग चाहिए होते हैं। तो ये होते हैं थोड़े गौड़, गौड़ बोलते हैं उनको, यहां कर्नाटक का की गौडर नहीं, वो अलग गौडर है, वो गौड़, गौड़ बोलते हैं उनको। वो गौड़ लोग बहुत पहलवान पहलवान होते हैं, यहाँ के गौड़ भी पहलवान होते हैं, लेकिन वो ज्यादा पहलवान होते हैं। क्या हमारे गौडर हैं यहाँ पे? कहाँ है गौडर? आए हैं डॉक्टर गौडर? नहीं है। तो उनको गौड़ बोलते हैं। तो गौड़ ये सारे आते हैं, बहुत हृष्ट पुष्ट रहते हैं। तो वो लोग जगन्नाथ भगवान के उठाते हैं मूर्ति, लेकिन बहुत भारी है, बहुत भारी होता है। इसलिए क्या करते हैं, उनको एक रेशम की डोरी होती है, उससे उनके कमर को बांधते हैं और फिर उससे उनको उठाते हैं। और थोड़े और लोग भी नीचे से भी उठाते हैं, लेकिन एक साथ में सिंहासन से लेकर बाहर रथ के लिए ले जाना ये बहुत मुश्किल है, एक साथ में नहीं हो सकता, बीच बीच में रुकना पड़ता है। तो जब ये पंडा लोग, ये गौड़ आदि, ये भगवान के विग्रह को मंदिर से लेके रथ के लिए पास जाते हैं, तो इसे पांडु विजय कहते हैं या पहंडी। बहुत झूमते झूमते ऐसे चलते हैं वो, आप में से किसी ने देखा है रथ यात्रा के समय जब भगवान की मूर्तियां बाहर निकाली जाती है तो ऐसे झूमते आते हैं। तो भगवान के विग्रह को लेते हैं, फिर उनको रखते हैं। वैसे बहुत सारे तकियां समय समय सब जगह जगह पर रखी जाती है, तो जगन्नाथ की मूर्ति को पहले एक तकिया पे रखा जाता है, परंतु वो तकिया फूट जाता है क्योंकि भगवान का विग्रह इतना भारी होता है कि जो भी कपास अंदर से फूट के फट करके सारे कपास के टुकड़े ऊपर आ जाते हैं। फिर उठा के फिर दूसरे तकिए तक ले जाते हैं और फिर दूसरे से तीसरे, इस तरह से नृत्य करते करते झूमते झूमते भगवान के विग्रह को ऐसे ऐसे झुलाते झुलाते वो ऐसे करते 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 फिर रथ तक पहुंच जाते हैं। तो इसको पहंडी कहते हैं या पांडु विजय। तो चैतन्य महाप्रभु और अपने भक्तों के साथ में ये पांडु विजय का उत्सव देख रहे थे। फिर तीनों भगवान आए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, वो सब अपने अपने रथों पे सवार हुए, उनको बिठाया। तो इतना आसान काम नहीं है नीचे से रथ के ऊपर उठाना उनको, बहुत भारी होते हैं। तो और उसके सामने जैसे जैसे जगन्नाथ भगवान आ रहे थे, तो पुरी के जो राजा थे प्रताप रुद्र, वो एक झाड़ू लेके रास्ते को साफ कर रहे थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये इतने बड़े राजा है फिर भी सड़क को साफ कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं सड़क को, इतना एक तथा कथित निम्न श्रेणी का कार्य कर रहे हैं, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए अंतःकरण में, और उन्होंने प्रताप रुद्र महाराज के ऊपर कृपा दी। अब चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है महाराज प्रताप रुद्र के ऊपर, ये एक बहुत रहस्यमय बात है। क्यों? क्योंकि बाह्य दृष्टि से वो ऐसे बात करते थे कि ये तो राजा है, ये सब इंद्र तृप्ति में लगा हुआ व्यक्ति है, और मैं तो सन्यासी हूं, मैं तो ऐसे राजा के साथ उठ बैठ नहीं सकता हूं। क्योंकि राजा महाप्रभु का दर्शन करना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं सन्यासी हूं तो मैं राजा से मिल नहीं सकता, ये सब राजनेता इन लोग होते हैं, हम नहीं मिल सकते इन लोगों को। परंतु अंदर से चैतन्य महाप्रभु जानते थे वास्तव में कि ये कितने बड़े और श्रद्धालु भक्त थे, परंतु सारे दुनिया के लिए वो एक सबक सिखाना देना चाहते थे कि एक सन्यासी को केवल किसी धनी व्यक्ति के पास ऐसे जाके ज्यादा समय के लिए उठना बैठना नहीं चाहिए। महाराज प्रताप रुद्र भक्त थे, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं थी, ताकि आगे चल के लोग केवल धन के लोभ से, धन प्राप्त करने के लिए, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए ऐसे लोगों के बीच में न रहें, ये सबक सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे किया। तो महाराज प्रताप रुद्र हमेशा सोचते थे कि चैतन्य महाप्रभु मुझे दर्शन देने के लिए तैयार नहीं है तो मेरे राज्य का कोई मूल्य नहीं है। मैं राज्य को त्यागने के लिए तैयार हूं और मैं वैराग्य का जीवन लेके मैं एक भिक्षुक बन जाऊंगा। तो जब चैतन्य महाप्रभु के कानों तक ये खबर पहुंची थी, वो बहुत प्रसन्न हुए ये सब बातें सुनकर। तो उन्होंने राजा के पुत्र के ऊपर कृपा दी, जो छोटा बच्चा था, लड़का था, क्योंकि महाप्रभु कहने लगे जो पिता अपने पुत्र के रूप में प्रकट होता है। तो जब मैंने पुत्र के ऊपर कृपा कर दी, इसका मतलब है कि पिता के ऊपर भी कृपा कर दी, इसलिए महाराज प्रताप रुद्र के बेटे के ऊपर उन्होंने कृपा की, अपना वस्त्र भी दिया। फिर भी और एक विशेष कृपा उन्होंने की, जबकि उन्होंने महाराज प्रताप रुद्र को झाड़ू लगाते हुए देखा, और वो कृपा कौन सी थी हम थोड़े समय बाद में सुनेंगे, एक 5-10 मिनट की बात सुनेंगे। तो फिर रथ में सवार हो गए जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन, और राजा प्रताप रुद्र भी वहां फिर से और भी झाड़ू लगा रहे थे। बहुत संगीत के वाद्य बज रहे थे, लोग जोर जोर से जय जगन्नाथ इत्यादि बोल रहे थे, भगवान के पवित्र नामों की ध्वनि सब जगह गूंज रही थी, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठे हो गए थे। इतना बड़ा उत्सव, रथ यात्रा का उत्सव, चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को इकट्ठा किया था, और उन्होंने ऐसे 4 दल बनाए भक्तों के संकीर्तन के लिए। हर एक दल में एक मुख्य गायक कीर्तनीय और 5 या 4 लोग जो उनके पीछे पीछे गाएंगे, और एक मुख्य नृत्य करने वाले भक्त। इस तरह से ये 4 दल उन्होंने बनाए, और बंगाल के अलग अलग गांवों से भी जो भक्त आए थे उनके भी 3 दल ऐसे बन गए, तो कुल मिलाकर 7 दल हुए। तो ऐसे 7 दल सारे रथ के आसपास में रहे, 4 दल रथ के सामने, 1 दल बाएं तरफ रथ के, और 1 दल दाहिने तरफ, और 1 पीछे की तरफ। तो ऐसे 7 दल हुए, और हर एक में 2 मृदंग और 7 या 8 करताल। तो इस तरह से बहुत धूमधाम से कीर्तन शुरू हो गया, और फिर जगन्नाथ भगवान का रथ, बलदेव, सुभद्रा देवी इनका रथ चलने लगा आगे। रथ यात्रा की विशेषता ये है कि ये लोगों से, भक्तों के खींचने से रथ नहीं चलते हैं, भगवान जगन्नाथ की इच्छा से ये चलते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत ज्यादा खींचने के बाद भी रथ हिलते नहीं है, और कभी कभी बहुत आसानी से, हल्का सा खींचने से भी रथ चलने लगते हैं। तो जगन्नाथ के भक्त जानते हैं कि इसका रहस्य क्या है। रहस्य ये है कि जब भगवान जगन्नाथ आगे चलना चाहते हैं तो रथ चलता है, जब भगवान जगन्नाथ नहीं चलना चाहते हैं तो रथ नहीं चलता है। कभी कभी जितने भी पहलवान हाथी घोड़े सब बुला के खींचने पर भी रथ नहीं चलता है। तो खैर अभी रथ चलने लगा और चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के संग कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, तो इतना दिव्य आनंद का वातावरण वहां था। सारे लोग ऐसे भगवत प्रेम के समुद्र में तैर रहे थे, बस सारे लोग प्रेमावेश में आ गए थे। चैतन्य महाप्रभु कभी इस दल में रहते कीर्तन के, कभी उस दल में, तो कभी इस दल में, सातों दलों में ऐसे घूमते रहते थे, कीर्तन और नृत्य करते थे। एक अद्भुत घटना हुई, चैतन्य महाप्रभु एक ही साथ एक ही क्षण में सातों दलों में कीर्तन और नृत्य कर रहे थे और हर एक दल को ऐसे लग रहा था कि चैतन्य महाप्रभु केवल हमारे दल में है। जिस तरह रासलीला के समय सारे गोपियों को लगता था कि श्री कृष्ण केवल मेरे साथ है, जैसे द्वारका में रानियों को लगता था कि श्री कृष्ण केवल मेरे साथ इस महल में है, जबकि श्री कृष्ण 16,108 रानियों के साथ में एक ही क्षण अलग अलग स्थान में उपस्थित रहते थे। श्री कृष्ण ने अपने आप को 16,108 रूपों में विस्तृत किया और हर एक रानी के साथ में वो रहे। तो ठीक उसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को सात रूपों में विस्तार किया और हर एक दल में रहे, और ये दृश्य कोई नहीं देख पा रहा था। देवतागण भी ऊपर से देख रहे थे, वो लोग भी देख नहीं पाए, परंतु थोड़े भाग्यशाली लोग ऐसे थे जो उसको जान सके। सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर और महाराज प्रताप रुद्र को भी ये बात दिखाई पड़ी। जब महाराज प्रताप रुद्र ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु एक ही क्षण में सात स्थान में उपस्थित हैं, अलग अलग दलों में वो उपस्थित हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, वो भाव विभोर हो गए। उन्होंने काशी मिश्र से कहा कि मैं ये देख रहा हूं, तो काशी मिश्र ने कहा कि आप कितने भाग्यशाली हैं, महाप्रभु की कृपा आपके ऊपर हुई है। तो ये कृपा चैतन्य महाप्रभु ने छुप छुप के अंदर से महाराज प्रताप रुद्र के ऊपर की। बाहर से उन्होंने क्या दिखाया, ये राजा है, मैं इनका संग नहीं कर सकता, परंतु अंदर से बहुत प्रसन्न थे, इसलिए ऐसी कृपा उन्होंने की, वो दर्शन उनको दिलाया जो देवता गण भी नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। तो महाराज प्रताप रुद्र श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर रहे थे, कीर्तन करते करते महाप्रभु इतना ऊंचा नृत्य करते, कभी इतना ऊंचा छलांग मारते कूदते और फिर गिर जाते नीचे और जोर से आवाज आती और सारे भक्त लोग वहां चिंतित हो जाते थे कि क्या होगा इनका, कुछ खराब, उनको कुछ चोट ना पहुंच जाए, वो तो स्वयं भगवान है, उनको क्या चोट पहुंच सकती है। फिर भी सारे भक्तों के मन में ये एक डर था, उनका भाव ऐसे था। तो उन्होंने पास में फिर उनके नित्यानंद प्रभु रहते थे जो उनको पकड़ते थे, जब ऊपर छलांग मारते थे तो उनके पास में रह जाते थे ताकि उनको चोट ना पहुंचे, ताकि वो गिर ना जाएं। इस तरह से लीला हो रही थी। जब चैतन्य महाप्रभु ऐसे नृत्य कर रहे थे तो महाराज प्रताप रुद्र भी इस दृश्य को देखने के लिए सामने से आए। उनके पास में उनके एक सेवक थे जिनका नाम था हरिचंदन। तो दोनों ही बड़े आश्चर्यचकित होकर महाप्रभु के कीर्तन और नृत्य को देख रहे थे। अब हुआ यह कि श्रीवास ठाकुर भी वहां दर्शन कर रहे थे। महाप्रभु के नृत्य को देखते देखते वो भी इतने भाव विभोर हो गए कि उनको पता नहीं चला कि वो राजा प्रताप रुद्र के सामने खड़े हैं। और क्योंकि वो सामने खड़े थे तो महाराज प्रताप रुद्र को ठीक तरह से दिखाई नहीं पड़ रहा था आगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आगे थे। तो हरिचंदन ने हल्के से श्रीवास ठाकुर के कंधे पे ऐसे इशारा किया कि जरा हटी, यहां राजा खड़े हैं आपके पीछे। परंतु हरिचंदन को कोई श्रीवास ठाकुर को बाह्य होश नहीं था, तो वो तो देख रहे थे कि कितना सुंदर दृश्य यहां दिखाई पड़ रहा है, चैतन्य महाप्रभु का नृत्य है। तो दूसरी बार हरिचंदन ने किया, ऐसे अनेकों बार किया, श्रीवास ठाकुर को कोई होश ही नहीं था कि कोई ऐसे कर रहा है। फिर अंतिम बार जब हरिचंदन ने थोड़े जोर से उनके शरीर कंधे पे ऐसे किया, तो श्रीवास ठाकुर को थोड़ा गुस्सा आया कि कौन मेरे कीर्तन में और नृत्य में ऐसे बाधा कर रहा है। तो घूम के चाटा लगाया, थप्पड़ मार दिया हरिचंदन के मुख पे। तो जब हरिचंदन के मुख पे ऐसे थप्पड़ मारा तो हरिचंदन को भी गुस्सा आया। किसी को भी आएगा ना गुस्सा। तो हरिचंदन को गुस्सा आया, वो कुछ बोलने वाले थे, लेकिन महाराज प्रताप रुद्र हंसे और कहा कि अरे हरिचंदन, तुम कितने भाग्यशाली हो, श्रीवास ठाकुर के कर कमलों से तुम्हें थप्पड़ मिला है, कोई साधारण बात नहीं है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। लेकिन इसकी नकल हम यहां नहीं कर सकते हमारे रथ यात्रा में, थोड़े सावधानी के शब्द कहना उचित रहेगा। कोई ऐसा नहीं सोचे कि हमने सुना है चैतन्य लीला में ऐसे ऐसे हुआ था, श्रीवास ठाकुर ने ऐसे थप्पड़ मारा था किसी को, तो हम भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं करना है हमें। ये सब कौन है, श्रीवास ठाकुर कौन है? नारद मुनि है। और चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं श्री कृष्ण है, तो उनका स्तर अलग है, ये केवल उनकी लीलाएं हैं। तो खैर, तो ऐसे कीर्तन करते करते आगे चले। अब बीच में क्या हुआ, कीर्तन करते करते जब हर एक दल में जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो जब रथ के पीछे जो दल था उसमें गए तो जगन्नाथ रुक गए, क्योंकि अभी वो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं कर पा रहे थे, रुक गए। और लोग खींच रहे थे सारे भक्त रथ को, लेकिन रथ हिल ही नहीं रहा था। फिर चैतन्य महाप्रभु जब फिर से सामने आए तो फिर रथ चलने लगा। तो ऐसे क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण तो हैं, परंतु वो श्रीमती राधा रानी के भाव में हैं। राधा भाव द्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। श्रीमती राधा रानी के भाव और कांति को स्वीकार करके वो यहां पर प्रकट हुए हैं, स्वयं श्री कृष्ण ही है वो। और जगन्नाथ भगवान कौन है? जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण है जो द्वारका में रहते हैं, परंतु द्वारका में रहते हुए वो वृंदावन को याद कर रहे हैं। वृंदावन की याद इतनी आ रही है उनको कि उनका रूप ही बदल गया है, ऐसे विरह के भाव में ये रूप उनका हुआ जो अभी जगन्नाथ भगवान का है। तो श्री कृष्ण द्वारका में रहते हुए भी कभी कभी रात में ब्रजवासियों का नाम लेते थे, गोपी गोपी, या कभी गोपियों को नाम से पुकारते थे, कभी अपने ग्वाल बाल मित्रों को बुलाते थे। तो उनकी जो पटरानियां हैं वो नहीं जान सकती थी क्या हो रहा है, हम इतनी अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं, श्री कृष्ण की, हमारे पति की, परंतु फिर भी वो वृंदावन को नहीं भूल पा रहे हैं। तो वो जान पाए कि वृंदावन के निवासियों का प्रेम कितना श्रेष्ठ हुआ होगा। वैसे देखा जाए तो द्वारका में रानियों के प्रेम में कोई कमी नहीं थी, उनकी सेवा में कोई दोष नहीं था, फिर भी श्री कृष्ण वृंदावन को भूल नहीं पाए। और उस समय जब कुरुक्षेत्र से सारे गोपियां श्री कृष्ण के रथ को खींच के जा रही थीं, उस समय श्रीमती राधा रानी भी थी, तो श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को खींच के ले जा रही थीं, चलो अब वृंदावन वापस चलो। तो जगन्नाथ भगवान का भाव ऐसे है और चैतन्य महाप्रभु का भाव भी है ऐसे, श्रीमती राधा रानी का भाव। तो जब चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे जाते तो जगन्नाथ भगवान रुक जाते, फिर चैतन्य महाप्रभु सामने आते तो जगन्नाथ फिर से आगे चलने के लिए तैयार हो जाते। तो ऐसे एक दिव्य स्पर्धा हो रही थी श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री जगन्नाथ देव के बीच में। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के सामने आ जाते तो तरह तरह के सुंदर श्लोकों का वर्णन वो करते, का उच्चारण करते, जैसे कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वो और एक श्लोक भी बोलकर और एक श्लोक बोलते थे, ना हम विप्र न च नरपतिर ना पि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपतिर न वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भर्तो पद कमलयोर दास दासानुदासः। इसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं न तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूं, मैं न तो ब्राह्मण ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी हूं, मैं कौन हूं, मैं गोपियों के स्वामी श्री कृष्ण के दासों का दास हूं। इस तरह से अनेक श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के सामने बोला करते थे। कई ऐसे श्लोक भी थे जिनका मतलब किसी को समझ में नहीं आता था सिवाय स्वरूप दामोदर के। और इस श्लोक का तात्पर्य ये था कि गोपियां और विशेष करके श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से कह रही है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम फिर से आपका दर्शन कर पा रहे हैं यहाँ कुरुक्षेत्र में, फिर भी हमें यमुना के तट पे आपके बांसुरी बजाना ये याद आ रहा है, तो आप वहां आइए और फिर से आप ग्वाल बाल के रूप में आप बनिए, आप वृंदावन में हमारे साथ में रहिए। तो ये एक भाव था, वो वृंदावन के श्री कृष्ण को याद कर रहे थे, कुरुक्षेत्र या द्वारका वाले कृष्ण उनको इतने पसंद नहीं थे, तो ऐसे वो श्लोक बोला करते थे। तो आगे चलते चलते रथ आगे चल रहा था, फिर जब बलगंडी नाम का स्थान आया जहां की थोड़े बगीचे आदि हैं, वहां पर भी जगन्नाथ भगवान रुक गए। अब इतना कीर्तन कर करके सब लोग थके हुए थे, तो महाप्रभु एक वहां बगीचे में जाके विश्राम करने लगे और प्रसाद भी वहां आया, प्रसाद सारे भक्तों ने ले लिया। और फिर महाप्रभु जब विश्राम कर रहे थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि इन्होंने एक दिव्य षड्यंत्र रचाया, क्योंकि वो चाहते थे कि महाराज प्रताप रुद्र को कैसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिले, इसके लिए कोई रास्ता ढूंढ निकालना चाहिए हमें। देखिए भगवान के भक्त भगवान से ज्यादा कृपालु होते हैं, तो जब भगवान कभी किसी के ऊपर क्रोध करते हैं तो उनके भक्त भी कृपा करते हैं। तो उन्होंने कहा राजा प्रताप रुद्रिक से कि आप एक साधारण व्यक्ति का वेश पहनना, राजा की तरह नहीं जाना। और वहां जब श्री चैतन्य महाप्रभु विश्राम कर रहे हैं तो आप उनकी सेवा, चरण सेवा करना, इस तरह से आपको कृपा मिल जाएगी। तो महाराज प्रताप रुद्र ने ऐसे किया। चैतन्य महाप्रभु लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे, हल्के से जाके चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को मालिश करना शुरू किया महाराज प्रताप रुद्र ने। और श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के अनेक श्लोक एक के बाद एक बोले जा रहे थे चरण कमलों को दबाते हुए। और अंत में उन्होंने गोपी गीत का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक बोला। कौन सा श्लोक था वो? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविविदीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरि गिरणंति ये भूरिदा जना। आप सब भूरिदा है क्योंकि आप सब इस श्लोक को कंठस्थ जानते हैं। तो क्या मतलब है इस श्लोक का? गोपिया श्री कृष्ण से कह रही है तव आपका आपके कथा अमृतम, कथा अमृतम आपका, आपकी जो कथाएं हैं वो अमृत के समान है। और ऐसे अमृत का पान जो व्यक्ति करते हैं उनको क्या लाभ मिलता है? कि ये संसार का जो कष्ट है वो मिट जाता है उसके लिए। ये संसार में त्रिविध ताप से सारे लोग ग्रस्त है। त्रिविध ताप अर्थात तीन प्रकार के कष्ट, आदि भौतिक क्लेश जो अन्यों के द्वारा हमें कष्ट मिलते हैं, अधिदैविक क्लेश जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हो जाते हैं, और आध्यात्मिक क्लेश जो हमारे शरीर और मन से उत्पन्न होते हैं। तो सारे लोग इस त्रिविध ताप से ग्रस्त हैं, दुखी हैं। परंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के कथा के श्रवण कीर्तन में अपना समय बिताता है वो ऐसे दावानल से बच सकता है। इसलिए तप्त, जो व्यक्ति तप्त है, त्रिविध तापों से ग्रस्त है, उसको तप्त कहते हैं। तो पका हुआ जो है, पक गया है, उसके लिए ये जीवन है, प्राण है कृष्ण कथा। एक बार हम किसी भक्त से बात कर रहे थे तो हमने उनसे पूछा कि आप कैसे हो? बोले महाराज मैं पक गया हूं। बोले क्या बात है? बहुत समस्याएं थी उसके जीवन में बेचारे की, तो पक गया हूं। तो हमने कहा फिर गोपियों की तरह कृष्ण कथा करो, कृष्ण नाम ले लो, तुम अभी तप्त हो, तप्त। तो तप्त लोगों के जीवन है कृष्ण कथा का अमृत। तव कथामृतम तप्त जीवनम। तो ऐसे ही सुंदर श्लोक है कवि विरीडितम कल्मशापहम, कि बड़े बड़े जो दार्शनिक होते हैं, कवि होते हैं, भक्त होते हैं, वे भी वर्णन करते हैं। सारे दुनिया भर में जो व्यक्ति कृष्ण कथा का वर्णन करता है वो भूरिदा है, सबसे उदार और कृपालु व्यक्ति है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने यह सुना ये श्लोक, तब तक तो उनकी आंखें बंद थीं और वो इसका आनंद ले रहे थे इन श्लोकों का एक के बाद एक के बाद एक। लेकिन ये तव कथामृतम श्लोक सुना तो चैतन्य महाप्रभु अपने आप को रोक नहीं पाए। तो जल्दी से उठे, उठकर उन्होंने आलिंगन किया महाराज प्रताप रुद्र को, ये नहीं जानते हुए कि ये राजा है। और पूछने लगे तुम कौन हो, तुम कौन हो, ये कृपा मुझ पर देने के लिए कहां से आए, तुम कैसे आए? मैं तुम्हारा इतना आभारी हूं कि तुमने मुझे ये कृष्ण कथा के अमृत का पान करवाया है। लेकिन महाराज प्रताप रुद्र ने अपना सही परिचय नहीं दिया, बल्कि हाँ वास्तव में सही परिचय ही दिया। उन्होंने कहा मैं आपका दास, आपके दासों का दास हूं। उन्होंने संसार का परिचय नहीं दिया, मैं राजा हूं। इसलिए भगवान के सामने, भक्तों के सामने कभी अपना संसार का परिचय नहीं देना है। देखो मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं। कभी अपना बड़प्पन किसी को नहीं करना चाहिए। भले अन्यों का कभी करे, अन्य भक्तों का करे, लेकिन अपना बड़प्पन भक्त को शोभा नहीं देता। तो महाराज प्रताप रुद्र ये कहने लगे मैं आपका दास, दासों का दास हूं। फिर भी महाप्रभु को पता नहीं चला। तो खैर इस तरह से अभी महाप्रभु की कृपा प्रताप रुद्र महाराज ने दूसरी बार प्राप्त की, अनेकों बार प्राप्त की। पहली बार कैसे प्राप्त की? उनके पुत्र के द्वारा। दूसरी बार उन्होंने दर्शन किया कि कैसे महाप्रभु सातों दलों में एक साथ नृत्य कर रहे हैं, जो कि और कोई नहीं देख पा रहा था सिवाय एक दो उनके निकट के पार्षद। और तीसरी बार उनको आलिंगन किया, उनको ऐसे चरण सेवा, चरण कमलों की सेवा करने का अवसर मिला। तो खैर फिर से जगन्नाथ आगे चलने लगे तो सारे भक्त लोग इकट्ठे हुए, चैतन्य महाप्रभु भी वहां पर आए। और आगे चल के फिर से भगवान जगन्नाथ रुक गए। उधर महाराज प्रताप रुद्र चिंतित हो गए कि क्या बात है। तो उन्होंने गौड़ों को बुलाया, उन्होंने और पहलवानों को बुलाया, फिर हाथियों को बुलाया, और जो माहुत थे वो हाथी के ऊपर बैठ के अंकुश से उनको प्रेरित कर रहे थे कि और खींचो और खींचो। लेकिन ये हाथी भी अपनी पूरी ताकत लगाकर खींच रहे थे, फिर भी रथ हिल नहीं रहा था। फिर चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए और चैतन्य महाप्रभु ने माहुतों को कहा कि शांत रखो, इनको हाथियों की जरूरत नहीं है। हाथियों को भी सांत्वना दी और महाप्रभु जगन्नाथ भगवान के रथ के पीछे गए और अपना कपाल उन्होंने रथ के ऊपर रखा और हल्के से ऐसे आगे बढ़ाए तो सारा रथ गड़गड़ गड़गड़ करके आगे चलने लगा। और सारे उपस्थित लोग वहां विस्मित हो गए इसको देखकर। ये तो बड़ा चमत्कार ही था, इतने सारे हाथी पहलवान मिलकर रथ को खींच नहीं पा रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अकेले हल्के अपने कपाल के स्पर्श से रथ को आगे आगे ले जाने में वो सफल हो गए। तो इस तरह से फिर चलते 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 गुंडीचा मंदिर में अंततः रथ पहुंच गया। फिर वहां स्वागत हुआ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का। फिर रथ से उतर के फिर वो बैठे विराजमान हुए गुंडीचा मंदिर में, जिस स्थान को दो दिन पहले ही चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ में साफ किया था। और वहां भी रोज महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जाते थे। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ में रथ यात्रा का उत्सव पहली बार मनाया। ये वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किया है। तो हम लोग भी जब जगन्नाथ रथ यात्रा मनाते हैं, हमें भी वैसे ही उत्साह से कीर्तन करना चाहिए, उत्साह से भक्तों के संग में मिलकर सेवा करनी चाहिए और भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा।